हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगला दिन। आज मेहंदी थी, जिसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो चुकी थी। मेहंदी का इंतजाम अंदर लॉबी में किया गया था। लॉबी को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। दुल्हा दुल्हन के लिए सुंदर सा स्टेज बनाया गया था, जहां नीचे सोफा लगा था और उसके ठीक ऊपर फूलों का झूमर सजा था। फूलों की लड़ियों से खूबसूरत सा बैकग्राउंड तैयार किया गया था। स्टेज के दोनों तरफ कतार में दीवारें लगी थीं और बीच में नाचने गाने के लिए जगह छोड़ी हुई थी। ढोलक के साथ म्यूजिक सिस्टम भी लगा था, जिस पर मेहंदी के गीत बज रहे थे। साथ ही महिला मंडली भी पारंपरिक गीत गाने में लगी थी। दुल्हे ने मेहंदी कलर का कुर्ता और वाइट जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें बालों को बढ़िया से सेट किए रौनक बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहीं बाकी लड़कों ने ग्रीन शर्ट के साथ वाइट जीन्स पहनी थीं, जिसमें आयुष्मान भी शामिल था। और हमारा आयुष्मान हरे रंग में काफ़ी डैशिंग लग रहा था। दुल्हन ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। फूलों के गहनों से सजी, बालों को मैसी बन में बांधे श्रेया काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और खुश भी। बाकी औरतों ने हरी साड़ी और लड़कियों ने हरे रंग का सूट पहना हुआ था। प्रीति ने भी आयुष्मान के मैचिंग कलर का प्यारा सा सूट पहना हुआ था। 16 श्रृंगार किए और बालों को फ्रेंच चोटी में बांधे लाइट मेकअप में भी वो कहर ढा रही थी। रौनक और श्रेया को साथ बिठाया गया और उनकी मेहंदी शुरू हुई। बाकी लड़कियां अभी नाचने गाने में मगन थीं, जिनमें मानसी भी शामिल थीं, और औरतों में कुछ मेहंदी लगवा रही थी तो कुछ गीत गा रही थीं। आदमी लोग बाहर जमघट बनाकर बैठे थे और आयुष्मान के साथ बाकी सभी लड़के रौनक के पास मौजूद थे। अर्श प्रीति के पास था, तैयार तो पहले ही कर चुकी थी उसे। उसने अर्श को खिचड़ी मंगवाकर खिलाई, उसके पेट को भरने के बाद उसे पानी पिलाकर उसका मुंह क्लीन कर दिया। अर्श के काम से फ्री होने के बाद वो उसे अपनी बाहों में उठाए रौनक के पास बैठे आयुष्मान के पास चली गई और भौहें चढ़ाए उसे घूरते हुए बोली, बहुत ऐशमौज कर लिया आपने, चलिए अब अपने बेटे को संभालिए। सब काम कर दिए मैंने इसके और अब मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, तो जब तक मुझे मेहंदी नहीं लग जाती और मेरी मेहंदी सूख नहीं जाती, अपने बेटे को अपने ही पास रखिएगा। प्रीति ने आयुष्मान को चेतावनी भरे लहजे में ऑर्डर दिया और अर्श को उसे थमाकर वहां से चली गई। आयुष्मान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराकर रह गया। प्रीति के जाने के बाद उसने अर्श की तरफ निगाहें घुमाई तो वो छोटा सा बालक अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा बड़ा किए टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। आयुष्मान की मुस्कान गहरी हो गई उसे देखकर। उसने अर्श के चेहरे को प्यार से चूम लिया, फिर उसे अपनी गोद में बिठाए उससे बातें करने लगा, जिस पर अर्श भी खूब आवाजें निकालने लगा, हाथ पैर चलाने लगा। जब जब वो मुस्कुराता तो उसके जबड़े नजर आते, तब वो और भी प्यारा लगता। आयुष्मान के साथ रौनक भी अर्श से बातें करने लगा, उसके साथ खेलने लगा, और प्रीति अपनी जिम्मेदारी आयुष्मान को सौंपकर चिंता मुक्त होकर मेहंदी लगवाने बैठ गई। वक्त गुजरा, एक घंटा तो आराम से बीत गया, फिर अर्श चिड़चिड़ा हो गया और उसने रोना शुरू कर दिया। आयुष्मान ने उसको घुमाया, उसे बोतल में दूध भी दिया, पर उसने लिया ही नहीं। ये पहली बार था जब अर्श आयुष्मान के पास चुप नहीं हो रहा था, उसके संभालने में नहीं आ रहा था। गरिमा जी भी अपना हाथ आजमा गई, पर अर्श उनसे भी नहीं माना। मानसी तो मेहंदी लगवाने बैठी थी, प्रीति भी सब देख रही थी। काफी देर तक आयुष्मान कोशिश करता रहा, फिर हारकर अर्श को लेकर प्रीति के पास चला आया और किसी हारे हुए खिलाड़ी जैसे सर झुकाते हुए मायूसी से बोला, प्रीति, अर्श को नींद आ रही है, पर ना तो वो दूध ले रहा है और ना ही सो रहा है, बस रो ही जा रहा है, शायद उसे तुम्हारे पास सोना है। प्रीति, जो तब से सब खामोशी से देख रही थी और अपने बेटे की ये शैतानी देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी, आयुष्मान के सीने से लगे अर्श को देखकर झल्लाते हुए बोल पड़ी, ऐसे तो पापा के लाडले को सारे दिन पापा मिल जाएं तो एक बार माँ को याद भी ना करे, पर आज जब मैं उसे ले नहीं सकती तो लाड साहब को मेरे पास आने का मन कर रहा है, सब शैतानी है इसकी, ताकि मेरी मेहंदी खराब हो जाए। प्रीति बुरा सा मुंह बनाकर मुंह लटकाए अर्श को देखने लगी। आयुष्मान ने उसकी बात सुनकर तुरंत ही जवाब दिया, नहीं होगी खराब तुम्हारी मेहंदी, तुम बस इसे अपनी गोद में लिटा लो, वो शांत हो जाएगा। आयुष्मान की बात मानते हुए प्रीति आलती पालती मारकर बैठ गई। आयुष्मान ने अर्श को उसकी गोद में बिठाया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए उसे थपथपाने लगा। कुछ ही मिनटों में अर्श बिल्कुल शांत हो गया। शायद उसे अभी अपनी माँ की गोद ही चाहिए थी और गोद मिलते ही धीरे धीरे वो नींद की आगोश में समा गया। उसके सोते तक प्रीति का पैर भी ऐसे ही मोड़े मोड़े सो गया। अर्श के सोते ही आयुष्मान ने उसे ले लिया और तब कहीं जाकर प्रीति ने अपने पैर सीधे किए। यहाँ शोर में अर्श का सोना मुश्किल था, इसलिए आयुष्मान उसे लेकर कमरे में चला गया, जबकि प्रीति श्रेया के पास बैठकर उससे बातें करने लगी।